Om Shanti.
Om Shanti.
एक गांव में स्कूल थी. स्कूल में शिक्षक राम कथा सुना रहे थे. लगभग सभी बच्चे सो रहे थे. चीज बहुत बार सुनाई जाती है वो सुनते समय सोना कोई अजीब बात नहीं है। शिक्षक को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे शिक्षक भी शायद सो रहा है, क्योंकि उसे रामकथा कंठस्थ थी। किताब खुली हुई थी, उसी बीच उस कक्षा में स्कूल के निरीक्षक आते हैं, इंस्पेक्टर, जांच करने। और निरीक्षक कहता है कि मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि राम कथा सुनाई जा रही है और बच्चों को तोड़फोड़ ज्यादा पसंद है, तो कहता है कि मैं ऐसा ही कोई प्रश्न पूछूंगा। वो पूछता है बच्चों से कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। क्या प्रश्न पूछता है? शिव का धनुष किसने तोड़ा? राम कथा। तो प्रश्न पूरा होने से पहले ही एक लड़का हाथ खड़ा करता है और कहता है मुझे कुछ कहना है। एक तो बोलता है मैंने नहीं तोड़ा क्योंकि मैं 15 दिन से छुट्टी पर था। कह इसके रह रहा हूं क्योंकि जब भी स्कूल में कुछ टूटता है तो मुझे दोषी बनाया जाता है। जब भी स्कूल में कुछ भी होता है तो मेरे पर नाम आता है। इसके लिए मैं पहले कह देता हूं कि मैं 15 दिन से छुट्टी पर था। इसके लिए ये धनुष किसने तोड़ा ये मुझे पता नहीं। तो निरीक्षक ये सुनकर हैरान हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है, ये क्या। इसी आश्चर्य से वो शिक्षक की तरफ देखता है। तो शिक्षक कहता है आप इसकी बात को बिल्कुल मत सुनना, ये धनुष जरूर इसी ने तोड़ा होगा क्योंकि स्कूल में जब भी कुछ टूटता है 99% यही बच्चा तोड़ता है, ये सबसे ज्यादा शरारती बच्चा है। और बच्चे को कहता अगर तुमने नहीं तोड़ा तो तुमको खड़े रहकर बताने की क्या जरूरत थी कि शिव का धनुष तुमने ही तोड़ा, नहीं तोड़ा। तो ये सुनकर निरीक्षक को लगता है कि अब यहाँ रहने से कुछ फायदा नहीं है। वो सीधा जाता है प्रधान अध्यापक के पास, प्रिंसिपल की कक्षा में, और उसको कहता है कि क्या स्कूल की हालत है, राम कथा सुनाई जा रही है स्कूल में, मैं प्रश्न पूछता हूँ कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, तो बच्चा कहता है मैंने नहीं तोड़ा, मैं 15 दिन छुट्टी पर था। और स्कूल का शिक्षक कहता है कि इसी ने तोड़ा होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा शरारती बच्चा है, आपका क्या कहना है इस विषय पर। तो प्रधान अध्यापक कहता है जो हुआ सो हुआ, अब बात को यही रफा तफा कर दो क्योंकि कुछ भी करना अर्थात हड़ताल या अनशन हो सकता है, न जाने कितने फर्नीचर टूट गए, कितने बेंच टूट गए, पर हमने कभी कुछ किया नहीं। अभी 2 महीने से तो स्कूल में शांति चल रही है, अगर किसी पर भी कुछ भी किया तो कुछ भी हो सकता है, इसके लिए जो हुआ सो हुआ, अभी बात को यही भूल जाओ। निरीक्षक अवाक, वो सीधा जाता है स्कूल की समिति अध्यक्ष के पास और कहता है कि स्कूल में रामकथा सुनाई जा रही है, मैंने पूछा शिव का धनुष किसने तोड़ा, बच्चा कहता है मैंने नहीं तोड़ा, शिक्षक कहता है इसी ने तोड़ा, प्रधान अध्यापक कहता है जो हो गया उसे भूल जाओ, आप क्या कहते हो। तो स्कूल की समिति का अध्यक्ष कहता है ठीक ही कहता है प्रधान अध्यापक जो भी खर्चा होगा वो समिति की तरफ से करेंगे और जो कुछ टूटा है वो फर्नीचर डिपार्टमेंट में भेज के उसको ठीक करा दो। तो ये है कहानी। इस संसार में कोई भी अपने अज्ञान को स्वीकार करना नहीं चाहता। अगर किसी ने ये कह दिया होता कि शिव का धनुष क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं, तो ये सब बातें नहीं आती थी, सब कुछ अज्ञान है। इसके लिए बाबा हर मुरली में अव्यक्त वाणियों में बार बार एक वर्ड आता है समझा, समझा क्योंकि बाबा को पता है शायद समझा नहीं है। मैं जो इनको समझा रहा हूँ, जो इनको मैं सिखा रहा हूँ, वो शायद किसी ने ही नहीं समझा है। तो हमारी अवस्था भी उसी बच्चे की तरह है जो कहता है कि मुझे नहीं पता किसने तोड़ा, उसी शिक्षक की तरह है जो कहता है कि इसी ने तोड़ा, उसी अध्यापक की तरह है जो कहता है जो हुआ तो हुआ, उसको भूल जाओ, बात को आगे मत बढ़ाओ।
बात को आगे बढ़ाना
संसार में जो कुछ हो रहा है उसका मूल कारण अज्ञान है। ये समझना कि मैंने सब कुछ समझ लिया है, यही अज्ञान
है,
यही अज्ञान है। इसलिए निरंतर ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। अव्यक्तवाणी में बाबा जो जो बोल रहा है, जो जो कह रहा है, उस एक एक महावाक्य की गहराई में जाने का ये समय है। उसको उसी रीति से समझना है जिस रीति से वो बोल रहा है। बोलने वाला बहुत ऊंची अवस्था में है, सुनने वाले बहुत नीची अवस्था में। वो जो बोल रहा है उसको उसी अवस्था में जब हम स्थित होंगे तभी उसको समझा जा सकता है। वो यहाँ है, हम यहाँ हैं, ये समझा नहीं जा सकता। तो ज्ञान की जिज्ञासा निरंतर हमारे अंदर रहनी चाहिए ताकि हम समझ सके बाबा जो कह रहा है, बाबा जो चाहता है। बाबा की आज कहा ना, तुम उम्मीदों के सितारे हो। सब कौन हो? उम्मीदों के सितारे, बाप दादा की जो चाहना है उसे पूर्ण करने वाले। अच्छा, तो आज क्या बोला? आज की अवगत कहानी पढ़ाते, कौन किसको देख रहा है?
देश विदेश के,
विशेष रूप से विदेशी बच्चों को विशेष शाबाशी देते हैं। भाषा कैसी है? विदेश विशेष रूप से विदेशी बच्चों को विशेष शाबाश। इसे कवियों की भाषा कहा जाता है, स्पोकन, बोली हुई, लिखी हुई नहीं, छंद, गद्य, राइम एंड रिदम। ऐसी भाषा भगवान के अतिरिक्त और कोई बोल नहीं सकता। भाषा में ही माधुर्य है, एक सौंदर्य है, एक साहित्य छिपा है,
पहचान भी है ना,
पहचान भी है। तो बाप दादा किसको देखकर हर्षित हो रहे हैं? देश विदेश के देशवासी और विदेशी, विशेष रूप से विदेशी बच्चों को बाबा शाबाश दे रहे, और जो दूर है उनको सम्मुख देख रहे। अभी अव्यक्तवाणी में भी बाबा ने कहा ना, अभी चली हुई, सम्मुख देख रहे हैं, समान समीप देख रहे हैं, और साकार में देख रहे हैं।
साकार समीप सम्मुख,
साकार भी देख रहे, समीप देख रहे, और सम्मुख देख रहे, निकट देख रहे। तो बाप दादा ने विदेशी बच्चों को शाबाश कहा, क्यों? तीन कारण बताए हैं वहां पर। ये तीन कारण के अतिरिक्त तो बहुत सारे कारण। पहला कारण, दूसरा कारण है भिन्न भिन्न धर्मों के पर्दे को हटाए। एक सेकंड में धर्म के पर्दे को हटाए। इधर आ गए, यहां पहुंच गए। एक तो कारण ये, धर्म की दीवार को लांग कर इधर आ गए। दूसरा कारण, कोने कोने में छिपे थे, और कोने कोने में छिप कर क्या कर दिया? बाप को पहचाना, निश्चय किया और जंप लगाई। पहचान नहीं, बहुत बड़ी बात है। तीसरा कारण, और एक कारण बताया, लगन से सारे विघ्नों को पार कर दिया। ये तो आज होता। वैसे बाबा को विदेशी बच्चे की उपरी है, क्या है उनमें जो भारतीयों में नहीं है? भगवान का टाइटल उन्होंने सिद्ध किया है, नहीं तो वो केवल भारत कल्याणकारी रह जाता अगर वो नहीं होते। तो वो है करके भारत, बाबा विश्व कल्याणकारी बना, उसका टाइटल उन्होंने सिद्ध किया है, बहुत बड़ा काम किया। और
सच्ची दिल भी
विश्व का पिता है,
कई बार वो बोलता सच्ची दिल है,
उनकी दिल सच्ची है, साफ है,
छिपाते नहीं,
कुछ भी छिपाते नहीं, छल कपट उनमें कम है। उनकी बुद्धि तेज है, भारतवासियों की तो बुद्धि बात मत पूछो, बहुत कुछ भरा है, इतने शास्त्र भरे है उसमें, उनकी बुद्धियों में इतने बुद्धि में इतना शास्त्र भरे नहीं है, डबल पुरुषार्थी।
और
आपका सहयोग भी है।
और क्या क्या है उनमें, नशा होता है उनमें ज्यादा, भारतीयों में नशा ज्यादा है या उनमें?
वैसे वो जिस चीज के पीछे पड़ते
लगन है उनमें, नशा उनमें ज्यादा है, दृढ़ता उनमें ज्यादा है, सच्चाई उनमें है। और क्या है, बाबा हमेशा जो कहते हैं उनके लिए, यहाँ आते तो किसी का चेहरा मुरझाया हुआ दिखता है कि कभी विदेशी का?
अपना पूरा सफल करते,
पूरा समय सफल करते हैं, एक हफ्ते के लिए आते हैं और साल भर का लेके जाते हैं, और यहाँ रहने वाले पहले से भरपूर है, एक हफ्ते के लिए आकर स्टॉक पूरा भर के लेके जाते हैं, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे, जिसको भी देखो मगन दिखेगा, याद में बाबा के कमरे में, या क्लास सुनने में, या मुरली पढ़ने में, या चिंतन करने में, ये सब करने में दिखेंगे वो। कभी देखा किसी को बैठे हुए यहाँ वहाँ की बातें करते हैं? बहुत कम।
विदेश में तो वो है ही नहीं बात करने वाला कोई, अपने धंधे में।
पर बाबा ये सब उनकी विशेषता हमेशा की बात है। सबसे और एक चीज, कल्चर, कहाँ जन्म लिया उस कल्चर में जन्म लेकर इस कल्चर को स्वीकार किया। उन्होंने कभी सुना, कभी देवताओं के नाम सुने? कहाँ सुने कभी? वहाँ का कल्चर, ब्राह्मण कल्चर उन्होंने स्वीकार कर लिया, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसके लिए बाबा कहते हैं विशेष रूप से विदेशी बच्चों को विशेष शाबाश दे रहे हैं, उसकी पीठ थपथपा रहे हैं।
रशिया और अमेरिका वाले मिलते नहीं थे 91 में, जब बाबा ने इस हॉल में बताया, तो अभी सब ब्राह्मण कल्चर बन गए ना।
कल्चर को स्वीकार कर लिया, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। उस कल्चर में जन्म लिया और इस कल्चर को स्वीकार कर लिया, उस भाषा में जन्म लिया और इस भाषा में स्वीकार किया, सब कुछ, कपड़े से लेके, भाषा से लेके, तो कल्चर, संस्कृति, सब कुछ सीखा। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता। बहुत सारे लोग हिंदी सीख गए।
तो जब मान लेते हैं जिस चीज को एक बार स्वीकार, चल दिया मैंने, चल दिया
पीछे नहीं हटेंगे।
ये चीज भी कही गई थी, उनका दिल यहाँ के लोगों से साफ है, क्या नहीं समझता।
कारण अभी तो चिंतन का विषय है, क्यों साफ है, सभी तो नहीं है पर मैक्सिमम तो है।
ब्राह्मण बनने के बाद
यहाँ के लोगों ने माना था, पहले भी देश में जाते हुआ
भारत ही तमोप्रधान सबसे ज्यादा कौन बना है?
लोग
सबसे ज्यादा तमोप्रधान भारतवासी, सबसे ज्यादा सत्वप्रधान भी भारतवासी,
लेट आते
हैं सबसे ज्यादा, विकारी भी भारतवासी, विकारों को जन्म देने वाले, विकारों का प्रचार करने वाले, विकारों को संसार में प्रसारित करने वाले भी भारतवासी, सब कुछ भारत में ही है।
विदेश में तो इसको
जो जन्म कहा लिया, भारत, उसकी भूमि भारत है, यहाँ से ही सब कुछ गया है,
हर बात में पूर्वज है ना,
सबसे श्रेष्ठतम श्रेष्ठ भी यहाँ से गया है, तो सबसे बुरा से बुरा भी यहाँ से गया है, क्योंकि जब देवी देवता गिरते हैं तो ही सब कुछ गिरने लगते हैं। जब देवी देवता गिरते हैं, जब क्रिश्चियन धर्म की आत्मा है वो थोड़ी ना पतित होती है, जब बौद्ध धर्म की आत्माएं आई वो थोड़ी पतित होती है, वो तो पहला ही जन्म है उनका, उनको पतित बनाने वाले भी कौन है? हम
लोगों में सच्चाई सफाई है, यही रीजन है वो लेट आए।
विरोध करने वाले भी कौन है पवित्रता का?
जो
देवी देवता वाम मार्ग में गए और नीचे गिरे और उसी समय पवित्र आत्मा आई, जो अपवित्र है उनके सामने पवित्र आत्मा अपना धर्म स्थापन कर रही है, तो उनका विरोध भी कौन करेगा?
पवित्र
पवित्रता के मार्ग में, अपवित्रता के मार्ग में अगर विघ्न आता है तो विरोध तो करेगी ना आत्मा। तो संभवतः क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाने वाली भी कौन आत्मा है? वही देवी देवता धर्म की आत्मा होने की संभावना है, हो सकता है, क्योंकि वो तो सत्व प्रधान थी उस समय। तमो प्रधान वो थोड़ी थे, तमो प्रधान बनना तो रजो में तो देवी देवता धर्म की आत्माएं आना चालू हुई थी। तो जो कुछ ऐसे मंदिर जिनमें बाबा को ऐसे कहते ना गंदे गंदे चित्र है, वो विदेशों के मंदिर में है क्या? मंदिर ही नहीं है उधर, उनके चर्च में थोड़ी चित्र है, वो सब भी भारत में है। काम का जन्म भी ये भूमि, काम शास्त्र भारत में बना गया, विदेश में नहीं बना गया। तो ये भी कारण हो सकता है। आगे क्या कह रहे हैं बाबा? उनको बाबा हिम्मत की भी प्रशंसा करते हैं, हिम्मत रखी और बाप के साथ ही सहयोगी बने,
सहयोगी हर कार्य में साथी,
और बाप भी उनको सदा साथ हर कार्य में भी साथ है। फिर बाबा एक दो गिफ्ट के बारे में बात करें, कौन सी गिफ्ट? एक लिफ्ट की बात कर रहे हैं, एक अद्भुत लिफ्ट जो हर एक को दे दिए बाबा। कैसी लिफ्ट है ये? अद्भुत, शक्तिशाली और सहज,
तीनों लोगों के शेयर कर
जितना भी अच्छा रह सकते।
तो ये लिफ्ट कैसी है? दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है। विशेषता क्या है? वंडरफुल, अद्भुत, अनूठी, शक्तिशाली और सहज, ये विशेषता है उस लिफ्ट की। ये लिफ्ट कितनी फास्ट है, एक सेकंड में त्रिलोक की सैर करा सकती है। केवल सैर नहीं, जहां जिस लोक में जितना समय स्थित होना है, जब चाहो उतना समय वहां पर स्थित हो सकते हो। ये लिफ्ट सदा कार्य करे, इसके लिए क्या करना है? अमृत वेले क्या करना है? दो काम।
अलर्ट।
अरे ये लिफ्ट को चलाने का बटन कौन सा है? स्मृति का स्विच। स्मृति का स्विच ऑन कर दो तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक दिन भर चलती रहेगी स्मृति का स्विच। अमृत वेले ध्यान पूर्वक, केयरफुल होकर और यथार्थ रीति से स्विच को सेट करके रखो तो सारे दिन भर ऑटोमेटिक चलेगी। और भी कुछ होगा, लाइट आ जाएगी, ऐसी लाइट कि कितने भी काले बादल हो, कितना भी गहरा बादल, सूर्य की रोशनी को ढकने वाला भी क्या हो जाएगा? भाग जाएगा, वहां टिक नहीं सकता। बादल आएंगे और बादल जाएंगे, ये सूर्यवंशी आत्माओं की निशानी है। बादलों के कारण उनका प्रकाश कम नहीं होगा, सूर्यवंशी आत्माओं की निशानी है वो, सूर्यवंशी है ना। इसके लिए तो ये स्मृति का स्विच ऑन किया तो एक सेकंड में जहां चाहो वहां, और जितना समय चाहो उतना समय वहां। ये कौन सी लिफ्ट की बात कर रहे हैं? बुद्धि। ये बुद्धि ही लिफ्ट है, ये बुद्धि ही लिफ्ट है, और ये बुद्धि की लिफ्ट की गिफ्ट बाप ने तुमको दी है। ये ऐसी सौगात तुमको दी है कि इसी बुद्धि से तुम सारे दिन भर जहां चाहो वहां जा सकते हो, जाके जो चाहे वहां से ला भी सकते हो। केवल जाना नहीं है, किस स्थान पे जाते हो तो कुछ लेके भी तो आना है ना, तो वहां से कुछ लाना भी है। वो तो कवि है ना, बाबा बाप ऐसा तो कवि है, साहित्य सम्राट कहा जाता है उसे। वो भाषा की रचना करता है, उसके अपने शब्द है जो किसी भाषा में नहीं है। पाठधारी, ऐसा कोई शब्द सुना? part English,
English.
Dhari.
English.
Love, lean. Love or lean. Kabhi suna ye shabd?
Baba ka shabd bahut pyara baba. Attention rakhoge. Tension to tension mein nahi hota. Attention rakhoge.
Rhyme system to wo. Ye baaye haath ka feel hai.
Ye mood le pure rhyme se.
Wo bhi spoken. लिखी हुई नहीं बोलते हुए और वो भी धीरे धीरे जल्दी जल्दी नहीं धीरे धीरे
वो इतना धीरे कि अगर अपन ऐसा बोला तो भूल ही जाए क्या बोला
तो ये लिफ्ट को चलाने की विधि क्या है
यूज करना
वो तो हो गया विधि
अच्छा विधि
अथॉरिटी बनकर अधिकारी बनकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाना तो वो कभी अटकेगी नहीं वो कभी धोखा नहीं देगी उसका कभी दुर्घटना नहीं होगी कभी एक्सीडेंट नहीं होगा वो नहीं तो आपातकालीन स्थिति में अगर हॉस्पिटल की लिफ्ट बंद हो जाए तो बड़े बड़े हॉस्पिटल देखा ना कितने बड़ी बड़ी मंजिल के होते तो क्या हो जाएगा पेशेंट तो मर जाएगा तो लिफ्ट कभी भी एनी टाइम चालू रहनी चाहिए बाबा ने कहा कभी भी अटके ना ये लिफ्ट ऐसे नहीं कि परिस्थिति आ गई अभी स्थित हो नहीं पा रहे हैं परमधाम में तो ये बुद्धि रूपी इसको क्या करना है ध्यान पूर्वक केयरफुली यथार्थ रीति से अमृत वेले इन स्विच को सेट करके रखो तो सारे दिन भर ये लिफ्ट ऑटोमेटिक चलती रहेगी कहीं अटकेगी नहीं कोई धोखा नहीं होगा कभी रुकेगी नहीं कभी इसको जंग नहीं लगेगा तो ऐसी यह दिव्य लिफ्ट है अद्भुत वंडरफुल पावरफुल शक्तिशाली और सहज तो ऐसी लिफ्ट बाबा ने तुमको दे दी और कब दी जन्म दे ही दे दी विदेशियों को कहा ना आगे जिस घड़ी जन्म हुआ उस घड़ी शक्तिशाली चार वरदान दे दिए उनको आगे ऐसे वरदान अगर ये वरदान किसी को मिल जाए तो शायद ही और कुछ चाहिए जीवन में ऐसे वो वरदान है चार तो ये गिफ्ट भी एक वरदान है उपहार है बाप की तरफ से तो सबसे पहला तो गिफ्ट लिफ्ट और दूसरा
लिफ्ट की गिफ्ट
ये तो हो गया और एक चीज भविष्य के लिए क्या एक चाबी दी कौन सी चाबी अधिकार की चाबी क्या करेगी ये चाबी स्वर्ग का गेट को खोलने की चाबी है अधिकार की चाबी है तो सबसे पहले कौन खेल खोलेगा ब्रह्मा नंबर वन वाला पर उद्घाटन के समय क्या करोगे खड़े रहोगे कि ताली बजाओगे कि देखोगे कि साथ साथ खोलोगे क्या करोगे ताली बजाएंगे
कोई तो उद्घाटन के रिबन के उस तरफ भी होते हैं पहले समझ जाते
हैं इधर नहीं जा सकते
इधर नहीं जा सकते
इधर नहीं जा सकते फोटो लेने चले जाते हैं उधर तो बाबा ने कहा साथ साथ खुलेंगे खड़े रहेंगे या
खुशियों की
खुशियों के पुष्प वर्षा करोगे क्या करोगे
खुशियों के पुष्प
तो साथ साथ खोलेंगे ठीक है तो ये था लिफ्ट एक तो दिव्य बुद्धि और एक तो अधिकार अधिकार प्राप्त हुआ ये अधिकार ही चाबी है अधिकार अर्थात बाप ने सर्व शक्तियों का अधिकार तुमको दे दिया जो बाप की शक्ति है वो तुम्हारी शक्ति है जो कुछ उसमें है वो सब कुछ हम में है यही अधिकार है हम अधिकारी आत्माएं हैं अधिकारी आत्माएं नहीं तुम अधिकारी बच्चे हो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हो फिर बाबा कह रहे हैं समीपता के बारे में कह रहे हैं ना समय की समीपता प्रमाण क्या देख रहे हैं बाबा भविष्य आगे बोलो ना नैनों में दो भविष्य देख रहे हैं एक तो अभी का भविष्य संगम का भविष्य क्या है समानता और भविष्य का और आगे का दो भविष्य बोलो ना एक तो अभी का और एक आगे का कौन सा स्वर्ग का भविष्य कौन सा फर्स्ट जन्म का तो यहाँ का जो भविष्य है वो है समान। तो जितने यहाँ समान उतने उधर संबंध में
समीप,
समीप जितने यहाँ समान उतने परम धाम में भी समीप। तुमसे तुम्हें से खाऊं, तुम्हें से खेलू, तुम्हें से बोलू, तुम्हें से साथ निभाऊ, तो उधर क्या हो जाएगा स्वर्ग में क्या क्या हो जाएगा फिर? सुबह सुबह सैर भी साथ साथ करेंगे, बगीचे में पाठशाला में भी साथ साथ पढ़ेंगे, रात भी साथ साथ खेलेंगे, वो अलग वो आगे भी यहाँ और क्या क्या करेंगे, राज्य भी साथ साथ करेंगे और मिलेंगे भी साथ साथ, राज्य साथ साथ करेंगे लिए उसके लिए ब्रह्मा का उदाहरण दिया। क्यों साथ साथ राज्य करेंगे? क्योंकि उसने यहाँ स्वराज्य अधिकार वो बनाया, स्व के अधीन नहीं स्वराज्य अधिकारी। तो जो फॉलो ब्रह्मा को करेंगे वो वहां पर भी साथ साथ राज्य करेंगे। जो यहाँ पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल है उनका क्या हो जाएगा? चिमन भाई उधर क्या हो जाएगा उनका? वो साथ में पाठशाला में साथ साथ पढ़ेंगे। जो यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे उनका उधर क्या हो जाएगा? वहाँ भी झूले में झूलेंगे। जो यहाँ खुशियों की प्राप्ति के नशे में या खुशी में नाचेंगे उनका वहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ वो रास करेंगे। जो यहाँ बाप के समीप संबंध में रहेंगे वो वहाँ रॉयल फैमिली के संबंध में समीप होंगे। इतनी सूक्ष्म बातें हैं, सोच भी नहीं सकता है कोई, इतना ही सूक्ष्म है।
पढ़ के बोली भी नहीं जा सकती, पढ़ के बोलने को पढ़ के भी नहीं बोली जा सकती।
एक मूल्य संगम युग बनाम सतयुग,
संगम युग बनाम
सतयुग। तो जो यहाँ समीप है वो परम धाम में भी समीप, वो सतयुग में भी समीप, द्वापर में भी समीप और संगम में भी समीप। किसके समीप? ब्रह्मा की बातें चल रही है।
बाबा की जो मुरली है तो एक जैसे कि दर्पण देते हैं अपने को क्लियर देख सकते कि हाँ मैं कहाँ जाऊंगा क्या
करूँगा, पर वो देखने की कला आ जाएगा। केवल साकार की बात नहीं चलती, अव्यक्त में पालना लेने वाले भी साथ रहेंगे। क्यों बरबर है ना?
जैसे एस्ट्रोलॉजी क्या करते हैं ना, ये 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक एक महीने का चार्ट से सारा
साल बता सकते हैं।
ये तो सारा हमारा कल को पूरा
सब कुछ यही बन रहा है ना। ये संगम योगी तो आधार है, यहाँ दुखी रहने के संस्कार है तो वही द्वापर से इमर्ज होंगे, यहाँ रोने के संस्कार है तो वही द्वापर से इमर्ज होंगे, यहाँ असंतुष्ट रहने के संस्कार है तो वही द्वापर से इमर्ज होंगे। सबका आधार अब यहाँ मौज में रहने के संस्कार है तो मौज में रहने के संस्कार, यहाँ मेहनत करने के संस्कार है तो वहाँ मेहनत करने के संस्कार, यहाँ मूंझने के संस्कार है तो वहाँ से मूंझने के संस्कार, यहाँ से ही सब कुछ है। सारा आधार ये संगम युग है, फाउंडेशन है, शिलान्यास ये है।
संस्कारों का
छत पर तोड़ने के लिए आएंगे मुरली के करते करते आएंगे, एक अलग प्रश्न है। चलो फिर आगे आगे क्या कहा बाबा ने?
मम्मी किसमें
चार वर्जन दिया है ना,
वो आ गया अभी बहुत आगे,
उसके पहले बीच में और भी
फर्स्ट जन्म।
फिर बाबा ने कहा फर्स्ट जन्म में आने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ अनिवार्यता है, आदि से अंत तक अगर ये दो बातें हैं तो फर्स्ट जन्म में आएंगे। उस दिन मुरली थी सूर्यवंशियों में कौन आएगा, अभी वो नहीं, सूर्यवंशी में भी फर्स्ट जन्म में, फर्स्ट जन्म में शायद खाली रहेंगे क्या अगर ये दो बातें हैं तो? कौन है फिर कौन, पर उसका क्राइटेरिया क्या है? मापदंड संपूर्ण अव्यभिचारी, कब से? आदि से अंत तक अव्यभिचारी,
अभी तक
अव्यभिचारी, दूसरा निर्विघ्न,
विघ्न आए भी
ऐसे नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, पर विघ्न तो आएंगे परंतु विजयी,
विजयी सदाई।
अव्यभिचारी माने एक किया
अव्यभिचार, व्यभिचार अर्थात पवित्रता, पर पुरुष से संबंध स्त्री के लिए कहा जाता है व्यभिचारिणी, व्यभिचार, एडल्ट्री इंग्लिश में शब्द है एडल्ट्री। विवाहित स्त्री या पुरुष का किसी और से संबंध को कहा जाता है व्याभिचार, एडल्ट्री, और ये है अव्याभिचार,
एक व्रता,
एक व्रता,
एक
आत्मा की शादी किससे हुई है परमात्मा से, तो उसके अतिरिक्त और किसी को याद करना, पवित्रता की बहुत सारी मूल्यां चली है उसमें, ये ऐसी बातें आई है। उस पवित्रता स्त्री को क्या कहा जाएगा, महापापिनी, कलंकिनी, दुष्टा, संसार में ये शब्द यूज किए जाते हैं, विश्वास घाती नहीं
बात,
वो पुरुष के लिए, यहाँ हम आत्मा की बात कर रहे हैं, एक बाप के अतिरिक्त किसी भी देहधारी, बोला ना संबंध, सारे संबंध एक से, आत्मा के सारे संबंध एक से, एक बाप के अतिरिक्त और किसी को भी याद किया तो वो भी विकर्म है, बाबा ने बोल दिया है, साकार महावाक्य है बाप। तो अव्यभिचारी कब से, आदि से अब तक या अंत तक, जब से जन्म लिया है तब से अब तक, अव्यभिचार, अव्यभिचारी याद, एक की याद, दूसरा निर्विक,
ये है फर्स्ट जन्म वाले,
कितना सहज है।
कर्नाटक को क्या कहा,
विदेश,
उनको आने में 8 घंटा लगते हैं, लंदन से यहाँ पहुँचने में 8 घंटा और कर्नाटक से यहाँ पहुँचने में 3 दिन 4 दिन लगते हैं, तो ये भी तो विदेशी हुआ बाबा ने कहा,
इंडिया का
भी। यहाँ एक ही बात महत्वपूर्ण है कि जो इनकी लगन है उसका वो क्या है, एक दीपक है, और अटेंशन जो है वो है
घृत,
तो अटेंशन का घृत डालते रहो और दीपक अविनाशी हो जाए, ये दीपक बुझना नहीं चाहिए, लगन का बाप के लिए जो लगन है, जो ज्ञान के लिए लगन है, योग के लिए जो लगन है, मधुबन के लिए लगन जो है वो कम नहीं होनी चाहिए, इसके लिए अटेंशन का घृत डालते रहो तो दीपक अविनाशी हो जाए। ये यहाँ पूरा हुआ, पार्टियों से मुलाकात, एक नंबर, क्या बोला विठल भाई पहली पार्टी को बाबा ने, पवित्रता, क्या है पवित्रता, प्योरिटी, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, शख्सियत, ब्राह्मण जीवन का व्यक्तित्व या शख्सियत, पर्सनैलिटी है,
शख्सियत,
पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन के संस्कार है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, निजी जन के संस्कार है, बाबा ने कहा जैसे किसी के जन के संस्कार स्वतः ही कार्य करते हैं, जैसे किसी का क्रोध का संस्कार है वो स्वतः ही कार्य करता है, अगर तुम्हारा जन्म का संस्कार पवित्रता है तो वो भी स्वतः ही कार्य करे, स्वप्न में भी अपवित्रता के संकल्प ना आए, इसको कहा जाता है संपूर्ण पवित्रता की, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी। तो बाबा ने शुरुआत में ही प्रश्न पूछा है, मन से, वचन से, कर्म से संपूर्ण पवित्रता की पर्सनैलिटी का अनुभव करते हो, अनुभव करते हो पूछा ना, तो प्यूरिटी ही ब्राह्मणों की पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, प्यूरिटी ही ब्राह्मणों की श्वास है, आधार है, प्यूरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉपर्टी है, धन है, संपदा है, जायदाद है, दौलत है, प्यूरिटी ही ब्राह्मण जीवन की सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, सलामती है। प्यूरिटी ही ब्राह्मण जीवन की यूनिटी है। प्यूरिटी ही लॉयल्टी है, ईमानदारी है, वफादारी है। प्यूरिटी ऑनेस्टी है। प्यूरिटी ही लॉयल्टी है। प्यूरिटी ही नॉवेल्टी है। नवीनता क्या है इस जीवन में? प्यूरिटी की नॉवेल्टी नवीनता है। प्यूरिटी ही ट्रुथ है, सत्यता है। प्यूरिटी ही
हाईएस्ट स्टेज एक
रॉयल्टी है। अलौकिकता क्या है इस जीवन की? संसार में भी ब्रह्मचारी रहते हैं लोग, हमारी जो लॉयल्टी है वो है पवित्रता। लॉयल्टी रॉयल्टी भी प्यूरिटी है। पर्सनैलिटी भी प्यूरिटी है। रॉयल्टी प्यूरिटी, पर्सनैलिटी प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी एक्यूरेसी यथार्थता भी प्यूरिटी है।
ब्यूटी भी है।
ब्यूटी सौंदर्य क्या है हमारा?
प्यूरिटी।
प्यूरिटी प्यूरिटी को अगर छीन लिया जाए
क्रूप बन जाएंगे,
तो क्रूप असुंदर अगली डर्टी अदर्शनीय।
ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण की परिभाषा ज्ञान में आने के बाद बाबा ने बताया, पहले तो जो मंदिर में उसे उनको ब्राह्मण समझते।
ब्राह्मणों की द्वापर से भी बाबा ने कहा ना, किसी भी श्रेष्ठ कार्य या शुद्धि के कार्य के लिए किसको बुलाया जाता है? ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। ब्रह्मा का भी उदाहरण दिया, ब्रह्मा किस आधार से आदि देव या पहला प्रिंस बना? उसका भी आधार था प्यूरिटी की पर्सनैलिटी। अगर प्यूरिटी इतना सब कुछ है तो इतना ध्यान है उसकी तरफ, ये अभी दूसरा सोचने का विषय कि वही धन है, वही संपत्ति है, संपदा है, वही प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है,
श्वास
है, रॉयल्टी है, लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, मॉडेस्टी है, वही हमारी मॉडेस्टी है, वही हमारी नम्रता है, सुशीलता है।
मॉडेस्टी माना
सुशीलता। प्यूरिटी ही हमारा प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है, रक्षा है, रक्षा कवच है। पवित्र आत्माओं को
प्रोटेक्शन है,
हमेशा सुरक्षित रहते हैं पवित्र आत्मा।
प्रोटीन है वो आत्मा के लिए।
जननी है,
जननी माँ,
सुख और शांति उसकी गोद में खेलते हैं। सुख और शांति, अगर जीवन में दुख का अनुभव हो रहा है, थोड़े भी दुख का अनुभव है, तो परिस्थितियों को ठीक नहीं करो। ठीक किसको करना है? अशांत मन है, विचलित मन है, चंचलता उत्पन्न हो रही है मन में, उद्वेग उत्पन्न हो रहा है, तो ठीक किसको करना है? पवित्रता को। क्योंकि पवित्रता ठीक है तो सब कुछ ठीक। इसके लिए बाबा ने कहा ना, ये दो बातों को ठीक करो तो फर्स्ट जन्म में आ जाएंगे, अव्यभिचार और निर्विघ्न। इन दो बातें अगर ठीक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में आ जाएंगे। तो प्यूरिटी ही पर्सनैलिटी है, प्यूरिटी ही रॉयल्टी है, प्यूरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है, प्यूरिटी ही प्रॉपर्टी है, प्यूरिटी ही ब्यूटी है, प्यूरिटी ही लॉयल्टी है, नॉवेल्टी है, मॉडेस्टी है, ऑनेस्टी है, सिक्योरिटी है, प्यूरिटी ही पब्लिसिटी है। कौन सी पब्लिसिटी? जिस सेंटर पर बहनों में पवित्रता बहुत ज्यादा है, वहां पर सेवाएं स्वतः ही होती है, उन्हें भागना नहीं पड़ता है, सेवाएं उनके पीछे पीछे भागती है। देव कुल की जो आत्मा है, देवी देवता धर्म की जो आत्मा है, जो सतयुग और त्रेता में रही हुई है और जिनमें पवित्रता के संस्कार है, पर अभी द्वापर से वो संस्कार लुप्त हो गए, ऐसी आत्माओं को देखकर वो संस्कार जागृत होंगे, खिंच खिंच कर आ जाएंगे, न बोलते हुए भी आ जाएंगे। इसके लिए बाबा ने कहा ना, संबंध संपर्क का महत्व है। आगे बोला है, लौकिकता पूरी हो जाएगी और अलौकिकता की सेवाएं चालू हो जाएगी, तो वो आत्माएं किसको देखकर आएगी? कितना बड़ा सेंटर है ये देखकर नहीं आता है कोई। आत्माओं में पवित्रता की शक्ति कितनी है, तो प्यूरिटी ही पब्लिसिटी है। एक योगी किसी गांव के बाहर आकर बैठता है, वो किसी को पुकार के बुलाता थोड़ी ना, मेरे पास आओ। साईं बाबा का दिखाया है ना, वो जब गया शिरडी में, अंदर थोड़ी गया, वो बाहर ही तपस्या करते बैठा कितना समय तक, और लोग खिंच खिंच कर वहां तक आ गए। वो थोड़ी बताने गया, उसने स्वयं को थोड़ी प्रत्यक्ष किया कि मैं यहाँ हूं, आ जाओ मेरे पास मेरा प्रवचन सुनने। आत्माएं खिंच खिंच कर वहां चली गई, क्योंकि पवित्रता जहां है, क्योंकि हर आत्मा में चाह है सुख की, वो सुख को वो संसार भोग विलास में ढूंढ रही है, परंतु वहां से वो अतृप्त ही रहती है, परंतु तृप्ति उसे पवित्रता में ही मिलेगी। तो जहां पर भी पवित्र आत्मा है वहां पर आत्माएं खिंच खिंच कर आ जाएगी। इसके लिए प्यूरिटी ही सबसे बड़ी पब्लिसिटी है, सिंप्लिसिटी भी है, तो प्योरिटी ही सिंप्लिसिटी है। कितने सारे सिटी है,
सिटी और टी
टी। तो ये तो हो गया पार्टियों से मुलाकात। दूसरा पैराग्राफ बोलो। मोह, मोह सकल व्याधिन कर मूला। संसार में जितने दुख है दर्द है उन सबका मूल है मोह। सर्व संबंध तुम्हारे बाप के साथ, तो मोह कहाँ जाएगा, फिर भी मोह पैदा हो रहा है। मोह का बीज क्या है,
संबंध।
संबंध को ही
कट
कर दो, विच्छेद। तो मोह उत्पन्न होगा ही नहीं, सारे संबंध एक बाप से, तो मोह किसने फिर। उदाहरण दिया बीज और वृक्ष का। बीज कोई उखाड़ कर फेंक दो तो वृक्ष कहाँ से पैदा होगा। कभी तोड़ते हो तो कभी जुड़ते हो। क्या कहा बाबा ने,
तोड़ते हो
एक से संबंध तोड़ते हो। एक से पहले बहुत मोह रखा, फिर लगा अरे बहुत दुख हो रहा है, तोड़ो इस संबंध को। ये तोड़ा, इसको तोड़ा नहीं तो दूसरे से जोड़ लिया, फिर उससे जोड़ा, फिर उसके बाद उससे थोड़ा दुख मिलने लगा तो ये तोड़ा, फिर तीसरा मिला। आत्मा तृप्त करना चाहती है स्वतः स्वयं की वासनाओं को, पर उसको वो मिलता नहीं मनुष्य से। मिलता है तो साथ में दुख भी मिलता है, जैसे ही दुख मिलता है वो संबंध को तोड़ देती है। तो ये तोड़ना और जोड़ना, बाबा ने कहा दो तरफ, दो तरफ, न मंजिल न किनारा, मंजिल न साहिल, कहीं नहीं पहुंचोगे। रावण के ना बाप के, त्रिशंकु की तरह बीच में लटके रहेंगे। तो वैसा हो जाएगा, एक नाव अध्यात्म में, एक नाव संसार में, एक नाव इधर जा रही है, एक नाव इधर जा रही है, कैसे चल पाओ। बंधन कटते नहीं टूटते नहीं, ये शिकायत मत करना। बाबा ने क्या कहा, बंधनों के लिए आगे काटना और तोड़ना, मिटाना काटते बंधन कटते नहीं और मिटते नहीं।
काटने के ऊपर भी बोला, अगर काट भी दिया लेकिन नेचुरल वायुमंडल से उसको पानी मिलता है,
इसके लिए क्या करो, जड़ से उखाड़ दो उनको। इरेडिकेशन, इंग्लिश में शब्द है इरेडिकेशन ऑफ द वासना। वासनाएं जो है, मोह जो है, उनको जड़ से उखाड़ दो, मूल समेत। सारों का बीज मन में है, मन में वासना उत्पन्न होती, जो थॉट है। ऐसा कहा जाता है, इंग्लिश में कहावत है कि कोई भी स्पेस कभी भी रिक्त नहीं होती है। स्पेस जो होती है ना, स्पेस मतलब जगह, स्थान, अंतरिक्ष, जो भी स्थान है, कोई भी स्थान कभी भी रिक्त नहीं होती, तुरंत कुछ ना कुछ वहां आ जाता है। मन भी कभी रिक्त नहीं होता है, अगर उसमें शक्तिशाली विचार नहीं है, समान के विचार नहीं है, अगर ज्ञान के विचार नहीं है तो तुरंत व्यर्थ आ जाएगा। थोड़ा समय भी उसको अगर रिक्त रखा, एम्प्टी वैकेट, तो तुरंत नया कुछ आ जाएगा, वहां व्यर्थ आ जाएगा। इसके लिए लगे रहो रात निरंतर, सदा सदा सर्वदा
ड्राइव फुल रखनी पड़ेगी।
एक मिनट भी अगर छोड़ दिया उसको ढीला, तो वहां पर, और एक विकार का संकल्प, वन सेक्सुअल थॉट, एक देह का संकल्प, देह के आकर्षण का संकल्प, मन में छिपी हुई सभी बुराइयों को जागृत कर देता है। क्रोध का संकल्प नहीं कह रहा हूँ, लोभ का संकल्प नहीं, अहंकार का संकल्प नहीं, वन सेक्सुअल थॉट, एक काम वासना का संकल्प, एक केवल संकल्प, क्रिया नहीं, एक्ट नहीं, संकल्प, एक संकल्प आया। आत्मा में जन्म जन्म से जो कुछ भरा हुआ है, जो कुछ बुरा है, जो कुछ अगली है, डर्टी है, अदर्शनीय, क्रूप, गंदा, बुरा, विकार, वो सबको प्रज्वलित कर देता है, वो सबको नया जीवन प्रदान करता है और वो सब कुछ बाहर आ जाता है। इसके लिए एक संकल्प भी नहीं या एक संकल्प की छूट है। कोई अगर टेररिस्ट आके कहे कि हम मैं तुम्हारे देश में केवल एक रात रुकना चाहता हूं, बस एक ही रात, जगदीश भाई ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, अगर कोई टेररिस्ट आकर, आतंकवादी आकर कहे कि मैं तुम्हारे देश में एक रात रुकना चाहती, तो रुकने की उसको परवाह की दोगे? कोई चोर और डाकू कहे कि मैं तुम्हारे घर में एक कोने में केवल एक रात के लिए रुकना चाहता हूं, तो क्या उसको रुकने दोगे? कोई कहे कि इस ग्लास, दूध के भरे ग्लास में केवल एक ही बूंद जहर का डालना है, ज्यादा नहीं, एक बूंद, तो डालने दोगे? अगर कोई कहे कि ये घास फूस से भरा हुआ कमरा, इसमें कोयले के केवल दो ही
एक ही तीली लगानी है,
बस ज्यादा नहीं, चिंगारी डालनी है, ज्यादा नहीं, तो डालने दोगे? निरपवाद उत्तर होगा नहीं। क्योंकि एक संकल्प आते ही सब कुछ भस्म हो जाएगा। इसके लिए अंश न हो, अंश सहित, मूल सहित इराडिकेशन ऑफ द वासनास। एक संकल्प ही नहीं आने देना, संकल्प आया तो वहां पर ही सब कुछ, संकल्प, मोह, आसक्ति, लगाव, झुकाव, प्रेम, कामुकता, वासना, ये यात्रा शुरुआत हो जाती है। काम तो बहुत दूर है, वासना शुरुआत संकल्प से है। श्री बाबा कहते संकल्प में ही उसे नष्ट कर दो, जब आया उसी समय उसको नष्ट कर दो, वहां उसको तृप्त नहीं करो, उसकी पूर्ति नहीं करो। ये सारे उदाहरण याद रखना, आतंकवादी का, पीली का, जहर और दूध का, चोर और डाकू का,
घास और चिंगारी,
घास और चिंगारी। इसके लिए संसार ने काम को जीतना असंभव कहा है। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत है उसमें, बाकी सबको तो जीत सकते हो, पर काम को जीतना असंभव कहा है। हिमालय को उखाड़ कर फेंका जा सकता है, पर काम को जीतना असंभव है, साधु संन्यासियों ने कहा है। कोबरा नाग के साथ खेल सकते हो, पर काम को जीतना असंभव है। अग्नि को पी सकते हो, धधकती अग्नि पर चल सकते हो, पर काम को जीतना असंभव है। सारा सागर के सागर कोई पी सकता है, परंतु काम को जीतना असंभव है। ऐसे ही नहीं कहा, ये साधु संन्यासी महावाक्य तथा कथित साधु संन्यासियों के महावाक्य। थॉट संकल्प में ही सारा, यू हैव टू वर्क एट द लेवल ऑफ थॉट, संकल्प लेवल पर कार्य करनी है। मुख बोलना क्या है उससे कार्य कम करो, करना क्या है वो स्वतः ही होगा, बोलना और करना स्वतः ही होगा। कार्य करना है थॉट लेवल पर, इमोशंस लेवल पर, भावनाओं को परिष्कृत, भावनाओं का शुद्धिकरण, विचारों का शुद्धिकरण करना, स्वतः ही सब कुछ शुद्ध हो जाएगा जीवन में। और जिसने काम को जीत लिया, मनोज भाई, उसने सब कुछ जीत लिया, वही जगत जीत है। जिसने इस आकर्षण को, इस आवेग को रोक लिया, बाकी सब ठंडा पड़ जाता है।
नमस्कार करेंगे
और क्या कहा, मोह के लिए, मोह में थे ना, मोह में हम नहीं थे, पॉइंट में थे। तो बाबा ने कहा पवित्रता के लिए और एक बात थी, न जानते हुए भी संसार की आत्माएं नमस्कार करती है, साधारण को नमस्कार नहीं करती, जो पवित्र है उनको नमस्कार, खुद आपस में लड़ते हैं परंतु मूर्ति को वंदन करते हैं। क्योंकि पवित्रता, इसके लिए मन बुद्धि स्वच्छता, संपूर्ण स्वच्छता वरदान था ना। तो सारे संबंध एक से, जब सर्व संबंध एक से है तो फिर मोह कैसा, तो इसको जड़ से ही निकाल दो, बाबा ने कहा, तो वृक्ष पैदा नहीं होगा, संबंध ही समाप्त कर दो तो आगे बढ़ेगा नहीं। संपूर्ण सर्व प्राप्ति स्वरूप, सर्वस्मृति स्वरूप, मन मना भव हो जाओ तो मन के बंधन से भी मुक्त हो जाओगे, मन के बंधन कर देंगे। अभी है विदेशियों से मुलाकात, क्या कहा उसने? विदेशियों के पार्टों को देखकर बाप दादा विशेष पार्ट को देखते, पार्टो बोला एक शब्द है उसमें, विदेश सारे पार्ट, ड्रामा के पार्ट धारियों में विदेश पार्ट, ड्रामा के पार्टों में विदेशियों का पार्ट बहुत मुख्य विशेष है। ये भगवान की हिंदी। तो चार वरदान थे दिए, ऐसे वरदान है कि अगर ये वरदान किसी को मिल गए तो और कुछ शायद ही नहीं चाहिए जीवन में। सबसे पहला वरदान पहली घड़ी से जन्म होते ही छत्र छाया, कब तक छत्र छाया है तब तक। उदाहरण कौन सा दिया? श्री कृष्ण का, वो साफ ही सुरक्षा का साधन बन गया। तो वैसे यहाँ पर भी बाप छत्र छाया है। अगर किसी को कहे भगवान की मैं आज से तेरी छत्र छाया, तो कितना निश्चिंत जीवन हो जाएगा उसका। योगक क्षेमम वहाम्य हम, गीता में कहा है कि जो योगी संपूर्ण मेरे प्रति समर्पित है उसका सब कुछ मैं करूंगा, उसका योग वहम, उसका क्षेम मेरे ऊपर है, उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी है। तो सबसे पहला वरदान दिया कि सदा छत्र छाया रहेगी, तो ये सबसे पहला वरदान। दूसरा वरदान जन्मते ही सेवा के संस्कार, ये तीसरा है, जन्मते ही सेवा के संस्कार का सहयोग। जन्म लिया और सेवाएं चालू, जहाँ सेवा है, सेवा का बंधन है तो वहां पर खुशी है, और कर्म बंधन है तो दुख की लहर है, वरदान था ना। तो जन्मते ही सेवा के संस्कार, अभी कोर्स हुआ ही नहीं और कोर्स कराना चालू, ऐसे भी कहिए, इतना नशा है उनको, इतने पक्के और निश्चय बुद्धि है। तो सेवा, दूसरा सदा साथ का अनुभव, मदद, कोई भगवान आकर कह दे कि आज से सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और कुछ चाहिए क्या? एक तो मैं तुम्हारी छत्र छाया रहूंगा, एक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और सदा तुम सेवा के उमंग उत्साह में रहोगे, और चौथा याद की यात्रा में सदा अनुभव का क्या हो जाएगा? एक अनुभव नहीं, दो नहीं, दस नहीं, सौ नहीं, हजार नहीं, अनुभवों की खान का अनुभव होगा, प्राप्तियों का। कितने अनुभव, हर दिन एक नया नया अनुभव। अगर ये चार मिल गए तो और कुछ चाहिए क्या? क्या और भी कुछ चाहिए? हर क्षण हर पल अनुभव।
ब्राह्मणों का इससे रिजल्ट नहीं
हमको, ये अनुभव इतने पर अंदर धारण कर लेंगे, समा लेंगे। फिर बाबा क्या कह रहे हैं? शिव शक्तियों से कह रहे हैं ना, सदा साथ है, शिव और शक्ति सदा साथ रहेंगे, एक के बिना रह नहीं सकते, याद और सेवा के बिना रह नहीं सकते। और जो भी कार्य करते वो कार्य कैसे करो? ईश्वर सेवा समझ निमित्त मात्र करो। तो इसको कहा जाता है कमल पुष्प समान जीवन। पांडव को भी पूछा कमल पुष्प समान है। फिर वो संपर्क की बात है कि संपर्क आना पड़ता है तो बढ़ाते चलो, तो एक दिन ये संपर्क समाप्त हो जाएगा, लौकिकता पूरी हो जाएगी और अलौकिक कार्य में वो लग जाएंगे।
मंदिर की बात भी थी ना, घर घर मंदिर,
हाँ वो ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया क्या कहा, बहुत ही तारीफ की ऑस्ट्रेलिया की, जो सामने रहता है उसकी बाबा इतनी तारीफ करते हैं कि उसको लगता है बस
नहीं हूँ
मैं ही नंबर वन हूँ, जो सामने है तुम नंबर वन हो, वो गया तुम नंबर वन हो, क्यों भी नंबर वन यहाँ से लगेगी, उनका आवाज भी सबसे पहले वहां से आएगा। और बाप दादा उनको बहुत मुबारक दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि अनुभव किया, अनुभव दूसरों को कराने में प्रैक्टिकल रूप, इसकी बाबा मुबारक दे रहे हैं। घर घर का गायन है भारत में, घर घर मंदिर, तो इनको क्या कहा बाबा ने कि तुम भी ऐसी सेवा करोगे कि घर घर मंदिर बन जाएगा,
चैतन्य मूर्ति,
तुम सब चैतन्य मूर्तियां हो, मंदिर में बैठी चैतन्य मूर्तियां हो। जब सब चैतन्य मूर्तियां बन जाएगी तो
प्रत्यक्षता,
तो पिछले संडे के पिछले संडे के पिछले संडे जब सब चैतन्य मूर्तियां बन जाएंगे तो सारे जड़ मंदिर समाप्त हो जाएंगे और भारत बेहद का मंदिर बन जाएगा। बोला था ना भारत बेहद का मंदिर बन जाएगा, चैतन्य शिवालय बन जाएगा।
कौन से संडे का? पिछले से
संडे पीछे तीन 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 पीछे तो भारत बेहद का मंदिर बन जाएगा। घर घर मंदिर, हर घर मंदिर और हर घर में पवित्रता की घंटी बजेगी। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं,
फिर वो घंटी इधर आएगी,
फिर वहाँ का आवाज यहाँ पर भी सबसे पहले पहुँचेगा। पर कैसा आवाज? बुलंद आवाज। कौन सा आवाज की बात?
गुप्त वेश में आ गया,
छद्म वेश धारण कर कर भाप इधर आ चुका है संसार में। जैसे बाप ने तुम्हें प्रत्यक्ष किया है, पहले तुम गुप्त थे, बाप ने तुम्हें प्रत्यक्ष किया, अब तुम बाप को प्रत्यक्ष करो। बाप की बच्चों में उम्मीदें हैं, तुम बाप के उम्मीदों के सितारे हो। तो बुलंद आवाज करनी है तो बाप प्रत्यक्ष होगा। यहाँ पूरा हुआ? समान कौन कौन से हैं? तो मैं चैतन्य मूर्ति हूँ, मैं उम्मीदों का सितारा हूँ, बाप से सदा छत्र छाया में रहने का वरदान मेरे पास,
मदद
सदा साथ का अनुभव करने वाली मैं आत्मा हूँ, सदा सेवाओं के संस्कार मेरे अंदर से, दिव्य बुद्धि की गिफ्ट, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट की गिफ्ट मेरे पास है,
चाबी हमारे पास में,
अधिकार की चाबी, सतयुग के गेट खोलने की चाबी हमारे पास है, ये सब हमारे पास। नियरेस्ट और डियरेस्ट तो बोला ही नहीं हमने, नियरेस्ट नियरेस्ट अर्थात समीपतम, अंतरतम, एकदम निकटतम, और डियरेस्ट ऐसी आत्मा, लकीएस्ट भी बोला एक जगह, भाग्यशाली। तो मैं लकीएस्ट आत्मा हूँ, मैं डियरेस्ट आत्मा हूँ, मैं नियरेस्ट आत्मा हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ। नशा नशा चढ़ना चाहिए तुमको, बाबा ने कहा।
कैसा नशा?
कैसा नशा? अरे तुमको बाप मिला है, तुम्हारे तो दिमाग की नस फट जानी चाहिए, इतना नशा चढ़ना चाहिए तुमको। जीवन भाई गड़बड़ है ना, आकार में बाबा ने बोला है, कितना नशा चढ़ जाना चाहिए दीवार में जाके। तुम रूहानी अल्लाह क्या मौलाई मस्त हो,
मौलाई मस्त,
मौलाई मस्ती में रहने वाले हो, मस्त मौला। क्या कहा?
विदेश में जॉब कर रहे थे, कल गुरुवार था, भूख लगाने तैयारी, रात में इसकी तैयारी करके, सफाई करके, तैयारी करके, चोरी कर लाओ उन बच्चों को मालिश किया, मालिश
मालिश भी करता है, सब कुछ करता है, पैर भी दबाता है माताओं के, माताओं के पैर भी दबाता है, सब कुछ करता है, सब कुछ करते हुए भी सब कुछ करना है, त्याग ज्यादा है ना।
क्या है वो बिजी है, बिजी व्यक्ति ही समय की वैल्यू समझता है, फ्री व्यक्ति को कोई वैल्यू नहीं होती है,
इसके लिए निरंतर
आलसी होता है,
बिजी रहो। और भी कोई पॉइंट है? वरदान
परमात्म लाइट,
वरदान है डायरेक्ट
कलेक्शन लेके रखना है अपने अपने कमरे में। कौन है इधर कनेक्शन वाले,
जो
इंटरनेट कनेक्शन वाले, उनको बोल देना कनेक्शन दे दो। कौन सा?
परमात्मा लाइट का,
परमात्मा लाइट का कनेक्शन, डायरेक्ट
डायरेक्ट
ऑनलाइन, वहां से लाइन ऑन करो तो क्या हो जाएगा?
अंधकार,
गहरे बादल, रोशनी को रोकने वाले गहरे बादल भी भाग जाएंगे, काले काले गहरे बादल भी भाग जाएंगे। पर वो कनेक्शन लेके रखना संजय भाई,
डायरेक्ट
कनेक्शन, हॉटलाइन
व्हाट्सएप,
ताकि लाइट ऑन करो तो अंधेरा भाग जाएगा। जहाँ प्रकाश है वहां पर अंधेरा नहीं हो सकता है। एक कमरे में 1000 साल से अंधकार का राज्य था, एक कमरे में, एक महल में अंधकार का राज्य था। कई लोगों ने उसको प्रयत्न किया, कोशिश किया उसको मारने का, पर वो मरा नहीं। लोग डरते थे इससे कैसे मारो, कई लोगों ने सेनाएं लेके गई, लेके गए तलवारें, लेके गए, कौन है ये अंधकार, इसको समाप्त कर दे, पर जीत नहीं पाए क्योंकि अंधकार बहुत शक्तिशाली था। नहीं जीत पाए उसको। अक्षय योनि सेनाएं लेके गए, तलवार लेके गए, अस्त्र शस्त्र लेके गए, बंदूक लेके गए, पर अंधकार का तो कुछ हुआ ही नहीं।
ना भी मैंने मारा,
मारा कैसे? एक दिया वहां रख दो तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। जहाँ प्रकाश है वहां पर अंधकार है ही नहीं, जहाँ ज्ञान है वहां पर अज्ञान है ही नहीं। अज्ञान कुछ होता ही नहीं है, अंधकार कुछ होता ही नहीं है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। तो जब भी दुख की अनुभूति है इसका मतलब ज्ञान की कमी है। अज्ञान है, अज्ञान कुछ है नहीं, वो ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। वो कहानी बताते ना, एक बार रात अंधकार को बहुत भगवान के पास पहुंचा, अंधकार रात या अंधकार भगवान के पास पहुंचा और कहा ये सूरज बहुत खराब है, मुझे बहुत तंग करता है, मुझे सोने नहीं देता, मुझे टिकने नहीं देता, सुबह सुबह आजकल मुझे भगा देता है, इसका कुछ करना चाहिए, इसके अत्याचारों से मैं बहुत पीड़ित हूँ। अंधकार जाकर भगवान को कहता है, अच्छा, भगवान कहता है अच्छा कहाँ है वो सूरज, उसको बुलाओ। तो सूरज आता है, सूरज को कहता है तुम इस अंधकार को क्यों पीड़ित कर रहे हो? तो कौन अंधकार, मुझे तो पता ही नहीं है ये अंधकार होता क्या है, लाओ उसको अंधकार। तो जब सूर्य है तो अंधकार तो
आ ही नहीं सकता,
आ ही नहीं सकता है। जहाँ सूर्य है, जहाँ मास्टर ज्ञान सूर्य है, वहां अंधकार कैसे? अंधकार है ही नहीं। जब निरंतर बुद्धि में ज्ञान की सरिताएं बह रही है, जब निरंतर ज्ञान का प्रकाश है, तो वहां दुख अशांति कुछ नहीं आ सकता। वो आ रहा है इसका मतलब अंधकार है, अंधकार अर्थात ज्ञान का अभाव। तो जब भी दुख की अनुभूति हुई, ज्ञान को बढ़ाओ, दूसरे से झगड़ा नहीं करो, ये मुझे बहुत तंग करता है, वो ऐसा करता है, ये परिस्थिति ऐसी, ज्ञान को बढ़ाओ, पवित्रता को बढ़ाओ, तो स्मृति सब समाप्त हो जाएगा। वो अंधकार से लड़ो नहीं तलवार लेकर, वो मरेगा थोड़ी।
डायरेक्ट कनेक्शन,
तो डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन हो तो क्या हो जाएगा? काले बादल भाग जाएंगे। स्लोगन
कितना तीव्र कर दो,
दूसरों की भी माया भाग जाए, तीव्र पुरुषार्थ की लहर वातावरण में फैला दो, कोई अछूता ना रहे,
टूट पड़ो,
सोने वाले भी पुरुषार्थ में लग जाए, स्वतः ही पुरुषार्थ की लहर बताओ, बताने की जरूरत नहीं, तुम पुरुषार्थ में लग जाओगे तो तुमको देखकर सब लग जाएंगे। बाबा हमेशा कहते हैं ना व्यक्तवाणियों में, पुरुषार्थ की लहर फैला दो, फरिश्ता बनने की लहर फैला दो, 6 मास तक अब ये काम करो। चलो और 5-10 मिनट, एक हफ्ते का कुछ देवता है, शुद्ध खान पान होता है उनके, और विश्राम, आत्मा थक चुकी है। कौन थका है? शरीर नहीं थका है, भक्ति से कौन थका है? आत्मा थकी है, जन्म जन्म भक्ति की है ना, भटकने के कारण थक चुकी है आत्मा। शरीर नहीं थकता है भक्ति में भी, बहुत घूमते हैं यहाँ वहाँ, उससे शरीर थकता है कि उनका नहीं थकता है, आत्मा को थकान है। बाप आत्माओं के लिए कह रहे हैं, और
बाप थकान उतारने आए हैं,
थकान उतारने विश्राम पूरी लेके जाने हैं। और भी कुछ, कोई शक्तिशाली पॉइंट?
खुशी में डांस,
खुशी में खदिया,
खदिया,
खुशी में तुमको खदिया मारनी,
ज्ञान डांस, हंसते खेलते,
हंसते खेलते ज्ञान डांस करते, तुम क्या बनोगे?
प्रिंस, प्रिंसेस बनते
हैं। स्टूडेंट लाइफ इज द
चलते
और
ये जबरदस्त पाठशाला है,
जबरदस्त पाठशाला है, गुप्त पाठशाला है, अनकॉमन पढ़ाई है ये पाठशाला। ये पढ़ाने वाला भी गुप्त है, पढ़ने वाले भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है, योग भी गुप्त है,
गुप्त आत्मा, गुप्त
गुप्त ही गुप्त है, अदृश्य है सारा इधर।
गुप्तेश्वर,
गुप्तेश्वर भगवान का ही एक नाम है, असली अविनाशी बाबा। और क्या कहा माता जी? जब तक जीना है तब तक याद करना है ना, जब तक शरीर ना छूटे तब तक सीखते रहना है,
सीखते रहना
ऐसे भी कहा जब तक शरीर ना छूटे तब तक
और गीते रहेंगे
ड्रामों में हर एक का पार्ट धारियों की दुनिया
पूज्य आत्माएं हो
ये ड्रामा के राग को जानकर सदा हर्षित रहो
तीन मत
अपने एम ऑब्जेक्ट को देख कर सदा हर्षित रहो तक पर बैठे या जमीन पर बैठे हो पर हम ये पढ़ाई पास करेंगे और ऐसा बनेंगे ये सोचकर सदा हर्षित रहो स्कॉलरशिप मिल रही है ये सोचकर सदा हर्षित रहो और
ब्रह्मांड का मालिक संत
चलते फिरते सुख धाम शांति धाम को याद करो तो दुनिया भूल जाएगी
स्वयं को हमेशा शांति धाम का निवासी समझो तो ये दुनिया भूलती जाएगी
तो परम पूज्य आत्मा हूँ
मैं परम पूज्य आत्मा हूँ
मंदिर
वो आपस में तो लड़ते हैं परंतु मूर्ति को पूजा करते प्यार करते क्योंकि पवित्रता है उसमें तो मन और बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ
वो गालियां मिलेंगी
विरोध
सब खाद का काम करेंगे
चाहे विरोध चाहे गालियां चाहे अपमान इंसल्ट अपोजिशन और गालियां क्या करेगा ये
खाद
का काम करेगा और मधुबन टावर ऑफ साइलेंस यहाँ पर म्यूजियम हो सकता है कि नहीं हो सकता
म्यूजियम
नहीं
ओम शांति का साइलेंस ऑफ साइलेंस
फरिश्ता कौन
बेहद दृष्टि वृत्ति कितनी वाले सबका वो
दृष्टि वृत्ति और स्थिति बेहद
संबंध एक भाव से कराना
सर्व का संबंध एक भाव से जुटाने वाला
और सबका है फरिश्ता सबका
सब का है एक दो का नहीं
न्यारा है
सर्व का हितकारी
और न्यारा है वो
न्यारा है और देह और देहभान से परे
परे है
और संदेशवाहक है और
फरिश्ता
आया और गया ऐसे सात आठ बातें थी और
सब के कल्याण
का सब का
कल्याण
और किस सागर में समाय रहो सच्ची तपस्या मतलब बाप की याद में रहना उसके स्वरूप में समाना ही सच्ची तपस्या और अच्छा वो अव्यक्त वाणी हमने रिवाइज नहीं किया ना तो क्या करना है अमृत वेला अमृत वेला आरंभ है अमृत पीना है प्रभाव पड़ता है दिन का दिन पर या दिन का दोनों कॉज एंड इफेक्ट और क्या था एक तो अमृत
मिलन की बात
मिलन की बात मिलन कैसा है
अलौकिक अनोखा मिलन है
प्यारा क्या करता है दुख को
भुला देता है
दुख को भुला देता है
और गीत भाग्य के गीत
भाग्य के गीत गाते
हैं बाप बच्चों के गीत गाते हैं बच्चे बाप के गीत गाते रहते हैं
बाप बच्चों को चैन नहीं आता है उसको सूना लगता है उसको खाली लगता है
जो
सदा
खुश रहते हैं
वो बाप दादा के आंखों के सामने घूमते रहते हैं झूमते रहते हैं लहराते रहते हैं नाचते रहते हैं नृत्य करते रहते हैं डांस करते रहते हैं भंगड़ा खेलते रहते हैं गरबा खेलते रहते हैं डांडिया खेलते रहते हैं खग्गिया मारते रहते हैं
खुश रहना में कोई कमी है तो बाबा को सुनो और बाबा को नहीं सुना
निमित्त को सुनाओ
पहला आशा नहीं है दूसरा पहला आशा नहीं है दूसरा
पहला आसान कौन सा है
आसान
दोनों ही कठिन लग रहा है
पहला आसान बाबा को सुनो
नहीं
उसने बोला कोई अगर बात हो
तो सदा खुश रहते या कोई और स्थिति रहती कुछ और स्थिति रहती एक है सदा खुश एक है कुछ और स्थिति कुछ और में बहुत कुछ
बहुत
है कुछ और में वो सब कुछ है जो कुछ ब्राह्मणों को हो रहा है कुछ और स्थिति दुख की स्थिति, गम की स्थिति, बदला लेने की स्थिति, चिंता की स्थिति, पुरुषार्थ नहीं हो रहा है उसके दुख की स्थिति,
उदासी, टेंशन,
उदासी, टेंशन,
परेशान, परेशान,
ब्राह्मण आत्माओं की उदासी होती है, उदासी के भी बहुत सारे हाँ पुरुषार्थ इतना सारा कर रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे, बस इस संकल्प से ही दुखी करना बहुत है पर नहीं हो रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, उठना तो चाहते हैं पर नहीं हो रहा है, मुरली समझना चाहते हैं, पढ़ने का सब कुछ चाहते हैं, सब पता है,
करते भी है लेकिन नहीं,
वही कहना अपने जो कहानी सुनाई ना पहले कि पहले तो ये समझो कि मुझे कुछ पता नहीं है, अभी मैं चालू कर रहा हूँ सब कुछ नया आज से अभी से, अज्ञान को स्वीकार करो और फिर आगे जाओ।
क्योंकि क्योंकि ज्ञान पढ़ लिया हुआ है अभी, अभी ज्ञान पढ़ लिया,
ज्ञान इतना पढ़ा है कि किसका क्या क्लास सुने, जो सुनाने वाला है जिसका क्लास है वो क्या सुनाने वाला है वो भी पता है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो ब्राह्मणों को पता नहीं है, किसके पास जाए समस्या लेकर किसके पास जाए तो वो क्या बताने वाला है वो भी पता है, सब पता है, कुछ है ऐसा ब्राह्मणों को जो त्रिकालदर्शी है ब्राह्मण, तो त्रिलोक का ज्ञान है उनके पास,
बाबा ने भी कहा ना बताने के लिए कुछ नहीं
है, रहा ही नहीं, सब कुछ बता दिया, अभी खाली जो कुछ बताया है उसको वापस समझो, समझा नहीं है वो, वही वाली बात हो गई कि शिव का धनुष मैंने नहीं तोड़ा, इसी ने तोड़ा, अगर तोड़ा तो तोड़ा, अभी चलो इसको भूल जाओ और आगे बढ़ो, अच्छा तोड़ा तो तोड़ो, भूल जाओ, समिति की तरफ से बना देंगे नया वाला, यही बात चल रही है। और कोई पॉइंट एक हाथ बहनों की तरफ से,
विश्राम
भी, विश्राम, विश्राम
बाबा की गोद,
गोद में आ जाओ, ज्ञान का चिंतन करो, याद करो,
बाबा ने बोला प्रोग्रेस करो,
मेरी उन्नति क्यों नहीं हो रही है ये सोचो, इसके बारे में सोचो, एक प्रश्न था ना एक मुरली में, मेरी उन्नति क्यों नहीं हो रही है,
स्वयं को स्वयं ही चेंज करो,
स्वयं को स्वयं चेंज करो, अभी दूसरा क्या बताएगा, दूसरों से क्या सुनेगा, सारा तो पता है, अभी केवल आशीष भाई बोल दो कुछ और, कुछ बोल दो केवल सुनने से नहीं होता है कुछ, ये तो समझ में, केवल सुनने से कुछ नहीं होता है,
सुन के ही सब कुछ खराब हुआ, रिप्लाई वो सब सुनते रहे,
जो बातें बहुत बार सुनी जाती हैं वो फिर उसका असर कम हो जाता है, मैं ज्ञान यहाँ की बातें कर रहा हूँ, केवल सुनने से कुछ नहीं होता, यहाँ की मुरली सब कुछ उसके
गहराई
में उतरना पड़ेगा ना, थोड़ा टाइम निकालना, यहाँ पूरा करके ओके।